यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जयो राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जयो राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय गिरी गोवर्धन गिरी गोवर्धन गिरी गोवर्धन जय गिरी गोवर्धन जय प्रभुपदा प्रभुपदा नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस रविवारीय श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के स्कंद 5 अध्याय 14वां भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। इस अध्याय से 27वां श्लोक। श्लोक गद्य में है इसलिए हम दोहराएंगे नहीं, एक बार मैं पढ़ता हूं उसके पश्चात हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। अध्वन्यमुष्मिन्निम उपगर्गास्तता सुख दुख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्यावमान क्षुत्पिपासा दिव्यादिज अन्मज रामरण रणादयाः। शब्दार्थ अध्वनि, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए, अध्वनि भौतिक जीवन के पथ पर अमुष्मिन उस इमे ये सब उपसर्गहा शाश्वत कठिनाइयां तथा और सुख तथा कथित सुख दुख कष्ट राग आसक्ति द्वेष घृणा भय डर अभिमान झूठा गर्व प्रमाद भ्रम उन्माद पागलपन शोक शोक मोह मोह लोभ लालच मात्सर्य विद्वेष ईर्ष्या दुश्मनी वैर अवमान अनादर श्रुत शुधा पिपासा प्यास आदि आपदाएं व्याधि रोग जन्म जन्म जरा बुढ़ापा मरण मृत्यु आदयहा इत्यादि। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस भौतिक जगत में अनेकों अनेक कठिनाइयां आती है, जैसा मैंने अभी बताया, और ये सभी दुर्लभ्य है। इनके अतिरिक्त तथा कथित सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि तथा जन्म जरा तथा मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती है। ये सभी मिलकर भौतिकवादी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। तात्पर्य, इस संसार में बद्ध जीव इन सभी परिस्थितियों को मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार करता है। यद्यपि व्यक्ति अपने आप को महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा समाजशास्त्री घोषित करते हैं, किंतु वास्तव में केवल वे षट है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 7:15 में उन्हें मूढ़ और नराधम वर्णित किया गया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम और पाप को करने वाले मूढ़ मेरी शरण नहीं लेते। श्रीमद् भगवद गीता में इन सभी भौतिकवादी प्राणियों को उनकी मूर्खता के कारण नराधम कहा गया है। उनको मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि वे भौतिक बंधन से मुक्त हो, किंतु वे ऐसा न करके दुखद परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। इसीलिए वे मनुष्यों में नराधम है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा गणितज्ञ भी नराधम है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उत्तर है कि वे नराधम है, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे मात्र अपनी झूठी प्रतिष्ठा और पद पर गर्व करते रहते हैं। वास्तविक तो यह है कि वे इस भौतिक अवस्था में उद्धार पाने, जीवन को उदात्त तथा ज्ञानमय बनाने की कोई विधि नहीं जानते। फलस्वरूप वे तथाकथित सुख की खोज में शक्ति तथा समय अपव्यय करते रहते हैं। ये आसुरों के लक्षण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब किसी में ये असुरी गुण रहते हैं तो वह मूढ़ बन जाता है। इसके कारण वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करने लगता है। फलतः वह असुरों के वंश में बारंबार जन्म धारण करता है और एक असुरी देह से दूसरे असुरी देह में देहांतर करता है। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर नराधम बना रहता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो यह जो पूरा अध्याय है उसका नाम है भौतिक संस्कार भोग का एक विकट वन, अंग्रेजी में मटेरियल वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसा इस चैप्टर का नाम है। पूरे इस चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भौतिक जो संसार है उसका वर्णन करते हैं। विशेष रूप से किस प्रकार यह जो भौतिक संसार रूपी वन है वो विकट है, वो कठिन है, उसमें कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, ये सब है, इसका वर्णन करते हैं। हालांकि हम भी इस भौतिक संसार के विकट वन के बारे में बहुत बार सुन चुके हैं, परंतु ऐसा है कि हमारा जो बुद्धि है या जो कॉन्शियस है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि भौतिक जगत दुख का स्थान है। हम बारंबार सुख की खोज में लगे रहते हैं। विशेष रूप से किस प्रकार का सुख, जैसे इस श्लोक में तथा कथित सुख, प्रभुपाद जी सुख का अर्थ बताते हैं तथा कथित सुख, क्योंकि रियल हैप्पीनेस जो सत्य रूप में जो सुख है वह इस भौतिक जगत में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम। जो घर, आलय माने घर या स्थान, ये भौतिक जगत बनाया ही इस प्रकार है। श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, गौरंग महाप्रभु की जय। तो ये भौतिक संसार जगत बनाया ही गया है दुख के लिए, दुखालयम अशाश्वतम, और यहां पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। तो ये भगवद गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत की व्याख्या की है। तो दुख के अलावा यहां पर कुछ मिल नहीं सकता है, परंतु फिर भी हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि हम हमेशा सुख की खोज में भटकते रहते हैं इस भौतिक संसार रूपी वन में। उसी का वर्णन इस पूरे चैप्टर में किया है। उसमें थोड़े से ऐसी काल्पनिक कथा जैसी बताई है सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि किस प्रकार एक व्यापारी रहता है, वो वन में जाता है सुख की खोज में। वहां पे उसको अनेकों अनेकों कठिनाइयां आती है, पत्थर पैर में चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, फिर हंटर वहां पे आता है शिकारी, फिर वो प्यास, उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, उसके इसलिए वो मिराज माने जो पानी नहीं है परंतु ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है उसके पीछे भागता है। फिर कहीं पे उसको सेंस एंजॉयमेंट, उसको इंद्रिय उपभोग करने की इच्छा होती है, तो फिर वो मधुमक्खी का जो हनी कोम्ब रहता है वो देखता है, उसको अटैक करता है, वहां से कुछ मधु मिलेगा, वहां पे उसके पीछे वो मधुमक्खियां लग जाती है और उसको उसका त्रास उपभोगना पड़ता है। तो इस प्रकार पूरा वर्णन ये चैप्टर में किया है कि एक एक चीज को एक एक का कंपैरिजन करते हुए किस प्रकार उसको परिवार जनों के साथ रहने की इच्छा होती है, पत्नी के साथ, फिर भौतिक आनंद लेने के लिए, परंतु वे भी उसका आदर नहीं करते हैं। कितना भी वो परिश्रम करे परिवार जनों को संतुष्ट करने के लिए, दिन रात मेहनत करे, फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं। और कभी कभी तो उसके पैशन माने रजोगुण के कारण उसकी ऐसी इच्छा होती है कि अपनी पत्नी होते हुए दूसरे स्त्री के साथ कुछ संबंध बनाए, तो फिर वो उस चीज के लिए प्रयास करता है। उसमें भी उसको फिर जैसे हनी को हनी बी का उदाहरण दिया है इस अध्याय में, कि किस प्रकार जब हम हनी हनी कोम के ऊपर उसको छेड़ते हैं तो किस प्रकार हनी बीज जो मधुमक्खियां है हमारे ऊपर अटैक करते हैं, उसी प्रकार अगर हम इलिसिट मतलब धर्म विरुद्ध जो मैथुन है या किसी स्त्री के पीछे लगते हैं तो क्या होता है, उनके रिश्तेदार या मित्र वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं और हमारा नाम भी खराब होता है और प्रतिष्ठा भी खराब होती है और हमको दुख भोगना पड़ता है और उसमें कुछ आनंद भी नहीं आता है। और आगे बताया है कि किस प्रकार कि वो खुद की स्त्री को और दूसरी स्त्रियों को मेंटेन करने के लिए उसको धन कम पड़ता है, तो फिर वो अपने पिता या पुत्रों का भी धन ले लेता है, वो भी कम पड़ता है, तो फिर चोरी डकैती ऐसे सब गलत कार्य करता है और ये सब चीजें करते हुए भी अंत तक उसको आनंद कहीं मिलता नहीं है। तो इसलिए तो आज का जो हमारा विषय है इस श्लोक में तो श्ल प्रभुपाद सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी ने और भी कठिनाइयां ये सब जो मटेरियल जो भौतिक संसार के बारे में वर्णन अभी तक हुआ उसके उपरांत और भी कुछ कठिनाइयां है उनका इनुमरेशन उनका लिस्ट बताया है, तो ये इस श्लोक में बताया है, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार रियल हैप्पीनेस या जो सत्य में सुख है उसका हम कैसे उपभोग ले सकते हैं या उसको हम कैसे पा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे भागवत का विषय रहेगा सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की खोज, सही सही सत्य में जो सुख है उसकी खोज। तो श्लोक में कुछ शब्द बताए हैं जिनका हम अर्थ देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे किस प्रकार इस जीवन में इस भौतिक संसार में ये सब चीजें दुख का कारण होती है या कठिनाइयां हमारे जीवन में उपस्थित करते हैं। तो पहला तो शब्द तात्पर्य अर्थ में आया है सुख, सो कॉल्ड हैप्पीनेस और तथाकथित सुख। तो तथाकथित सुख का कोई ऐसा उदाहरण याद आता है कि दिखने में तो सुख है परंतु उसमें दुख हो रहा है, जैसे इसी चैप्टर में वो भी वर्णन आया कि पैसे कमाने का, दो दिन पहले परम पूज्य एसबी केशव स्वामी महाराज का प्रवचन हुआ उसमें महाराज जी ने ये बताया कि किस प्रकार धन के अर्जन में उसके मेंटेनेंस में और वो जाता है तभी भी दुखी होता है, विशेष रूप से पैसे कमाने का जो चीज है उसमें बहुत मेहनत है, माने पैसे कमाने के लिए मेहनत है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तकलीफ है, फिर वो पैसा संभाल के रखने में टेंशन है कि कोई आके लूट ना ले या उसका कोई चोरी ना हो जाए इसके लिए, और कभी ना कभी तो धन जाता ही है। मानो पूरा लाइफ टाइम भी आपने उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, तो भी अंततः जैसे मृत्यु आता है तो ये धन जाने वाला है। तो हर स्टेज में पैसे कमाने के दुख है। तो जो सुख है, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, इसका एक शास्त्र में भी उदाहरण है कि चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज के जीवन में पहले बहुत दुख था, तो उन्होंने अंगिरा मुनि से विनती किया, आशीर्वाद मांगा और पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो उनको लगा कि जैसे मुझे पुत्र होगा तो मेरा जीवन सुख से भर जाएगा। तो एक्चुअली में साधु के आशीर्वाद से उनको पुत्र हुआ भी, और साधु के वचनानुसार उन्होंने उसका नाम भी क्या रखा, हर्ष शोक। हर्ष माने आनंद, शोक माने दुख। तो हर्ष शोक नाम रखा, और तुरंत, जैसे कि हमको पूरा स्टोरी पता है कि किस प्रकार उसकी सौतेली माँ ने उनको विष पिलाकर वो बच्चे को मार दिया, तो उसके जीवन में दुख आया। तो मानो शुरुआत में तो हर्ष सुख था, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, तथाकथित सुख था कि पुत्र की प्राप्ति होना, परंतु कुछ ही समय में उसका रूपांतर क्या हो गया, दुख में हो गया। तो जीवन में सबसे बड़ा सुख था उनके लिए, क्योंकि करोड़ों उनके वाइफ्स थे, मतलब उनकी पत्नियां थी, और बहुत सालों से वे प्रयास कर रहे थे परंतु उनको पुत्र नहीं हुआ था। तो उसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे, भगवान के भक्त से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो पुत्र मिला, परंतु अंततः वो किसका कारण बना, दुख का कारण बना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार तथाकथित सुख भी दुख का कारण है। दूसरा है डिस्ट्रेस, दुख, शब्द शब्द ही दुख है। तो दुख में तो, परंतु हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग दुख में भी आनंदी रहते हैं, दुख में भी उसका, जैसे किसी ने महाराज जी को प्रश्न पूछा कि डिवोटीज के जीवन में मिजरीज आती नहीं क्या, क्योंकि भक्त है तो उनके जीवन में भी तो तकलीफें आती है, मिजरीज आते हैं। तो महाराज जी ने उनको उत्तर दिया कि मिजरीज आर कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तो मिजरीज भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, परंतु उससे वो सफर होना है कि नहीं, उससे वो खुद को तकलीफ देते नहीं है, उसमें भी वे अच्छा मार्ग ढूंढ निकालते हैं, उसमें भी भगवान का हाथ देखते हैं और उससे भी कुछ सीख लेते हैं। तो उसके विपरीत कुछ लोग इतने दुख से प्रभावित होते हैं कि कुछ गलत कर बैठते हैं। उसका शास्त्र में उदाहरण है कि कर्ण, महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर आता है, कि किस प्रकार उसके जीवन में भी कई सारे दुख आए, कि उनके माता ने उनका त्याग किया, उसके पश्चात उनको सूत पुत्र कहकर सभी ने उनका तिरस्कार किया, उनको उनके गुरु ने भी उनको शिक्षा नहीं दी, फिर वो परशुराम जी के पास गए। तो जीवन में कई सारे दुख आए, परंतु इन दुखों की वजह से उन्होंने क्या किया, जीवन में एक गलत निर्णय लिया कि उन्होंने दुर्योधन, जो कि धर्म के विरुद्ध था, अधर्मी व्यक्ति था, उसका जीवन भर साथ दिया। तो उसके कारण उनके जीवन में दुख, एक दुख के कारण दूसरा दुख कंटिन्यू, फिर अंत तक उनका मृत्यु हो गया अपने भाई के हाथ से। क्यों? क्योंकि दुख से वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, गलत ही कर बैठे। भौतिक जीवन में भी अभी भी हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में दुख आते हैं, परंतु उसमें दुख में वो गलत चीजों का आधार लेते हैं। कुछ लोग एडिक्शन माने अल्कोहल या ऐसा कुछ, दारू वगैरह, उसका आधार लेते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड, आत्महत्या तक कर लेते हैं, परंतु यह सब अपेक्षित नहीं, उससे उनका दुख टेम्प्ररी, थोड़ी देर के लिए नष्ट होता है, वापस से उस दुख का जो भोग है उनको करना पड़ता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि दुख में भी हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तीसरा शब्द आता है इस अर्थ में, आसक्ति या राग, तो अटैचमेंट। अटैचमेंट इस जीवन में हम देखते हैं कि वो भी दुख का कारण है, और अटैचमेंट तो और दुख का कारण है। अभी भौतिक संसार में, विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में, सबको अपने पुत्रों के प्रति प्रति अपने पत्नी के प्रति अपने परिजनों के प्रति अटैचमेंट, राग रहता है, मतलब मोह रहता है, अटैचमेंट रहती है। परंतु उस अटैचमेंट के कारण अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो उसके कारण हमको दुखी होगा। आइडियली, आदर्श रूप से तो हमको ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। हाँ, ड्यूटी पर लेवल पे, माने हमारा कर्तव्य बोलकर भगवान के वे अंश है या भगवान के भक्त है या भगवान ने हमें सेवा के लिए वो परिजन दिए हैं, इसलिए उनका सेवा करना चाहिए, उनसे रिश्ता बनाए रखना चाहिए। परंतु अगर हम ज्यादा ही अटैच हो गए, ज्यादा ही उनसे आसक्त हो गए, तो वो हमारे दुख का कारण होगा। उसका उदाहरण आता है पुनः महाभारत से धृतराष्ट्र जी का। धृतराष्ट्र जी उनके पुत्र से दुर्योधन से इतने अटैच थे कि उनका कोई भी गलती उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और मतलब बहुत सी गलतियां उन्होंने की। अपने भाई को मारने का प्रयास किया, भीम को विष देने का प्रयास किया, फिर तो पूरे परिवार, पांडु महाराज के पूरे परिवार को लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया, और अनेकों अनेकों गलत चीजें की। परंतु कोई भी समय उन्होंने अपने पुत्र को अच्छा शासन नहीं किया, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसको अपने उनकी जो गुनाह थे, उनके जो गलत कार्य थे, उनको पीछे रखा, उनको सपोर्ट किया। इसके वजह से अंततः उनको दुख प्राप्त हुआ, उनके सामने उनके पूरे 100 पुत्र मारे गए, और जिस पुत्र के लिए वो कर रहे थे उसका भी मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओवर अटैचमेंट अगर रही तो वो भी हमारे दुख का कारण होगी। आगे शब्द आता है द्वेष, घृणा। तो ज्यादा घृणा किसी से करना, ये भी हमारे जीवन में दुख का कारण बन सकता है। घृणा करनी नहीं चाहिए। अभी महाराज जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि कोई व्यक्ति, हम कितना भी प्रयास करें वो हमसे अच्छा व्यवहार करता ही नहीं, बहुत ही गलत व्यक्ति है, गलत ही कार्य करता है, हम जो भी अच्छा करने जाए तो भी उसका उल्टा ही अर्थ निकालता है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तो महाराज बोले उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उससे ज्यादा हम भिड़ेंगे तो नुकसान ही होगा। शास्त्र में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था तो हमेशा भगवान का द्वेष करता था और उसका भी नाश ही हो गया। भगवान का द्वेष तो करना नहीं चाहिए, किसी ने नहीं करना चाहिए, परंतु सभी लोग भगवान का द्वेष करके ही यहां पर आए हैं। भौतिक जगत का उदाहरण ही ऐसा है कि हमको भगवान से ईर्ष्या हुई, भगवान से द्वेष हुआ, और हम इस भौतिक जगत में खुद को सेंस एंजॉयमेंट या जो इंद्रिय सुख लेने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो उसका उदाहरण आता है शिशुपाल का। शिशुपाल जन्म से लेकर अंत तक हमेशा भगवान का द्वेष करता था, भगवान को गाली देता था, भगवान के गलत कार्यों का वखान करता था। हालांकि भगवान कुछ गलत कार्य नहीं किए, जो भी भगवान किए वो तो अच्छा ही किए, परंतु उसके दृष्टि में वो गलत था और वो उसका वखान करता रहता था, भगवान को गलत सलत बातें बोलता था, और उसका अंत क्या हो गया? जब भी उसके 100 अपराध पूरे हो गए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। और एक आगे शब्द आता है भय। अगर भय, वो भी अगर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त है उनको थोड़ा माया का भय होना अच्छी बात है, माया से थोड़ा डरना चाहिए। परंतु शास्त्र में एक उदाहरण है कि जो व्यक्ति हमेशा भगवान से डरता था और डर के कारण उसका पूरा जीवन दुखमय हुआ और वो उसका अंत हो गया, उसका उदाहरण है कंस। कंस हमेशा भगवान, जन्म के पहले, क्योंकि उसको ये आकाशवाणी हो गई कि देवकी का 8वां पुत्र आपका अंत करेगा, तो तभी से लेकर उसके स्वयं के अंत तक वो हमेशा भय में रहता था कि देवकी का पुत्र मेरा अंत करेगा। उसके लिए उसने अनेकों अनेकों गलत कार्य किए। पहले तो अपने बहन को मारने का प्रयास किया, फिर अपने बहन और बहनों ही दोनों को जेल में डाला, फिर उसके पुत्रों की हत्या की, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को मारा, और फिर अनेकों अनेकों राक्षसों को गोकुल वृंदावन इधर भेजा। तो ऐसे अनेकों अनेकों गलत कार्य किए, किसके कारण? भय के कारण, मृत्यु के भय। पर मृत्यु को कोई टाल सकता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है कि वो अभी तक अमर है? ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी का आयुष्यमान इतना ज्यादा है, हम गिनती नहीं कर सकते इतना, परंतु फिर भी उनको भी एक समय पे शरीर त्यागना पड़ता है, दूसरा शरीर लेना पड़ता है। तो किसी को भी मृत्यु चुका नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है एज श्योर एज डेथ, मतलब मृत्यु के इतना श्योर कुछ भी नहीं है इतना तो। परंतु मिथ्या प्रयास करते हैं लोग। कंस भी वही प्रयास कर रहा था कि अपने मृत्यु को रोकने का या मृत्यु को मारने का, और उसमें उसके भय के कारण उसका पूरा जीवन दुखमय रहा। और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके आगे शब्द आ रहा है कि फॉल्स प्रेस्टीज, कि अभिमान। अभिमान माने किसी हर व्यक्ति को स्वाभिमानी रहना चाहिए, परंतु अभिमान अगर हम किसी चीज का ज्यादा अहंकार करते हैं कि मेरे पास यह पद है या यह श्रुति शिविर, वो जो महाराज जी ने बताया, धन ज्यादा है, सौंदर्य ज्यादा है, कोई भी चीज का अगर हम अभिमान करते हैं तो वे भी हमारे दुख का कारण होगा। उसका शास्त्र में उदाहरण आता है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति इतने दक्ष थे कि उनका जो ड्यूटी था या सेवा था भगवान के प्रति, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से उन्होंने किए थे, परंतु वो सेवा करने के कारण, उनके सौंदर्य के कारण, और सब लोग उनको मान दिया करते थे, उनका आदर करते थे, उसके कारण उनको अभिमान हुआ, और इस अभिमान के कारण वे क्या गलत कर बैठे, शिवजी जो कि भगवान के परम वैष्णव है, भगवान के भक्त है, उनका अपमान कर बैठे, और उसके कारण उनके जीवन में दुख आया। आगे शब्द आता है इल्यूजन, प्रमाद। तो इसका उदाहरण है रावण। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया, उनके भाई जो विभीषण थे उन्होंने समझाया, उनकी सती पत्नी थी मंडोदरी, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, यहां तक कि उनका राक्षस भाई जब भी उसको उठाया कुंभकर्ण, उसने भी समझाने का प्रयास किया कि सीता को वापस छोड़ दो, सीता के कारण तुम्हारा समूल माने तुम्हारे पूरे वंश का नाश होगा, परंतु अंत तक वो समझा नहीं, वो इल्यूजन में ही था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं त्रिलोक विजेता हूं, मैं रावण सॉरी श्री राम ये तो केवल मनुष्य है, मुझे तो देव दानव कोई भी हरा नहीं सकता। तो इतना उसको अहंकार था, इतना उसको ये था, प्रमाद में था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, और अंततः उसका भी अंत हो गया, उसको जीवन में दुख की प्राप्ति हो गई। दूसरा आगे एक शब्द आता है उन्माद। तो इसका उदाहरण है नल कुबेर और मणिग्रीव। कभी कभी हम किसी नशे में ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं, नल कुबेर मणिग्रीव जैसा, वे कुछ सोमरस या कुछ ऐसा पान किए हुए थे, और उनको धन का भी गौरव था कि उनके पिता कुबेर के पास बहुत धन था, इसके कारण वे नारद जी का अपमान किए कि नारद जी सामने आए फिर भी वे उनको आदर तो नहीं दिए, उल्टा उनको ही पूछने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार नल कुबेर मणिग्रीव की स्टोरी में हम देखते हैं कि अगर उन्माद मैडनेस अंग्रेजी में उसको शब्द है कि किस चीज के अहंकार के वश अगर हम ऐसा उन्माद करते हैं तो उससे भी हमको दुख प्राप्त होता है। आगे शब्द है कि ग्रीड, लोभ। अभी गांधी जी का शायद वो वाक्य है कि भगवान हर एक व्यक्ति की नीड फुलफिल कर सकता है, हर व्यक्ति को जो भी नीड है, जो भी जरूरत है उसकी, वो भगवान पूरी कर सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति की भी ग्रीड भगवान पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीड को तो कोई लालच है, उसको तो कोई लिमिट ही नहीं है। मानो अपने पास हजारों करोड़ों रुपए भी आ गए तो भी इसकी इच्छा है कि और भी कमाए या और भी लालच करें। ऐसा ही उदाहरण है शास्त्रों में हिरण्यकश्यपु का। उसको पूरे देवी देवता, देव दानव सभी जन उसको आदर देते थे, और पूरे विश्व में जितना सारा धन था वो सब उसके पास संग्रहित था, मतलब मान था, सभी था, फिर भी एक केवल उसका बालक, उनका 5 वर्ष का पुत्र प्रहलाद उनको आदर नहीं दे रहा है या उनके कहने अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, इसके लिए उनके जीवन में दुख आया। हालांकि उसके पास सभी है, परंतु लालच ऐसे है कि उनको एक को भी, एक भी अपने से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके जीवन में दुख आया। फिर आ गए मत्सर्य और ईर्ष्या, एनवी और एनमिटी। इसका उदाहरण है दुर्योधन। उसके जीवन में भी काफी सारे सुख सुविधाएं उनके पिता ने करके रखी थी, परंतु उनका ऐसा था कि मेरा सुख देखने से अच्छा बाजू वाले का, माने जो पांडव थे उनका सुख देखकर उसको ज्यादा ईर्ष्या होती थी। उनके जीवन में कोई भी सुख ना आए इसके लिए वो जीवन भर प्रयास करता रहा। अंततः जो महाभारत का युद्ध होने वाला था, तभी भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, और उस समय भगवान ने कहा कि केवल आप 5 गांव इन पांडवों को राज्य करने को दो, क्योंकि वे क्षत्रिय है, वे भिक्षा मांग के नहीं जी सकते, उनको राज्य करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैं उनके ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि आप केवल 5 गांव उनको राज्य करने के लिए दो, वो आपसे युद्ध नहीं करेंगे और आपके सभी अपराध भी माफ कर देंगे। परंतु दुर्योधन की इतनी ईर्ष्या और एनमिटी थी कि वो बोला कि 5 गांव क्या, एक सुई के नोक पर जितनी जगह रहती उतनी भी मैं नहीं दूंगा। तो इसकी इसकी वजह से उसका क्या हुआ, पूरे 100 भाइयों का नाश हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे जो जो शब्द एक एक अर्थ में इतने शब्द बताए और भी आगे है, परंतु हम समय के अभाव से उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अंततः जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भी बताया इसी श्लोक में। इसी श्लोक में इतने केवल शब्द सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए कि हर एक शब्द किस प्रकार हमारे दुख का कारण होता है। अंततः बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारा जो JSD कोर्स है उसमें भी एक टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस, उसमें भी हम ये चीज बोलते हैं कि किस प्रकार कॉमन मिजरीज टू ऑल। अभी हमने जो अभी तक चर्चा की वो इंडिविजुअल एक एक केस थे कि किसी के जीवन में इस कारण दुख हुआ, किसी के जीवन में इस कारण दुख हुआ, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं वे सबको कॉमन है, सबको ये दुख होते हैं, इच्छा हो ना हो सबको ये दुख होते, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। हर एक व्यक्ति को ये दुख भोगना ही पड़ता है। जन्म लिया है तो जन्म के समय थोड़ा दुख होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु होना है अटल है तो मृत्यु के समय दुख होगा, और बीच में बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 चीजें जो है वो सबके लिए कॉमन है, कोई भी इससे छूट नहीं सकता है। तो इस प्रकार एक श्लोक के अर्थ में इतने सारे दुखों का वर्णन है। इस भौतिक संसार में किस प्रकार ये भौतिक संसार फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, हालांकि हम यहां पर एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, भगवान से विमुख होकर हम यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, आनंद उपभोगने के लिए, इंद्रिय उपभोग करने के लिए आए हैं, परंतु इस संसार में दुख ही भरा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बनाने वाले ने ही इसको सेटिंग ऐसा किया है कि यहां पर आपको दुखी मिलेगा। परंतु इसमें भी सुख का मार्ग हम ढूंढ सकते हैं अगर इच्छा है तो। तो हमने देखा कि परंतु क्यों, अगर हम बोलेंगे कि हालांकि इस दुनिया में इतना दुख है, फिर भी टाइम टू टाइम समय समय पर हमको सुख का अनुभव होता है। तो उसका उदाहरण आता है कि एखादे व्यक्ति को हम पानी में डुबाए उसका सर, और बीच में उसको ऊपर निकाले, 2 मिनट पानी में रखा, वापस निकाला, तो वापस निकाला उस समय उसको थोड़ा सांस लेने को आता है, उसी को हम सुख मानकर बैठते हैं। एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप से वो सुख नहीं है, वो केवल दुख का अभाव है। कुछ समय के लिए हम दुख से बाहर निकले, उतना ही समय है हम जो हमें सुख समझ में आता है, पर एक्चुअल में वो सुख नहीं है, क्योंकि हर सुख में दुख छुपा हुआ है जैसे हमने देखा। तो हमारा जो अस्तित्व है, स्वरूप है, हम भगवान के अंश है, और भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए हम भी क्योंकि हम भगवान के अंश है तो क्वालिटेटिवली माने एक गुण रूप से हम भगवान के जैसे ही है, कि हमारा भी स्वरूप जो है, आत्मा का जो स्वरूप है वो भी सच्चिद आनंद रूप है। हालांकि भगवान विभू है, बड़े है, बहुत ही बड़े है, और हम अणु है, हम बहुत ही छोटे, भगवान के अंश है, हम कभी भी भगवान से एक रूप नहीं हो सकते, परंतु भगवान से गुणों में हम एक रूप हो सकते हैं। जैसे भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, उसी प्रकार आत्मा का भी स्वभाव सच्चित आनंद रूप है। इसलिए हम देखते सच्चित आनंद का अर्थ पहले देखते हैं। सत माने इटर्नल परमानेंट, चित माने नॉलेज, और आनंद माने आनंद प्लेजर। तो परम अभी हम कैसे देख सकते हैं कि कैसे हम ये मैच कर सकते हैं कि हम भी कैसे भगवान की तरह सच्चिदानंद रूप है। तो हमको भी जीवन में परमानेंट चीजों के प्रति ज्यादा लगाव है। मानो कोई व्यक्ति भाड़े के घर में रह रहा है, रेंटेड हाउस टेनेंट बोल के, तो उसको हमेशा इच्छा रहती है कि खुद का घर बनाऊं, वहां से हमें कोई घर मालक या जो ओनर है वो हमें निकाले नहीं, वहां पे हम स्थित रहे, सालों साल वहीं पे रहे। तो हर एक का इच्छा रहता है कि परमानेंट घर हो, घर का जाने दो, जॉब जॉब में भी हर एक को लगता है कि मुझे गवर्नमेंट परमानेंट जॉब मिले, कोई तो प्राइवेट जॉब है वहां पे हमेशा डर है कि मुझे मेरा बॉस निकाल देगा, ऐसी जॉब का हमको आनंद नहीं आता है, ऐसी इच्छा नहीं होती। परमानेंट जॉब की खोज में हम हमेशा रहते हैं कि वहां से हमें कोई निकाले नहीं। ऐसी उसी प्रकार जो भी परमानेंट चीजें हैं, ये नैसर्गिक, जैसे कि सागर है, समुद्र है, उसके पास जाके आप बैठे, या पर्वत है बड़े बड़े पुराने, या पुराना एखादा वटवृक्ष है, 500 साल से 1000 साल से ये वृक्ष खड़ा है, उसके पास जाकर हमको एक आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं आत्मा एक परमानेंट चीज है, सत रूप है, इसलिए हमको इन चीजों से आनंद प्राप्त होता है। दूसरा है चित, नॉलेज सीकिंग। अभी देखिए, बाकी जो योनिया है, प्राणी है, वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चार चीजों के पीछे ही लगते हैं। उसका उनको नॉलेज मिला, खाना कहाँ मिला, मेरी मादी कहाँ पे है, कि शत्रुओं से या दूसरे प्राणियों से रक्षण कैसा करना है, इसी में उनका पूरा ध्यान लगा हुआ रहता है। परंतु ह्यूमन जो इंसान है, उसका ध्यान इन चीजों के परे भी लगा होता है। भक्त का ध्यान भगवान की प्रति लगा होता है, और जो भक्त नहीं भी है उनका भी ध्यान लगा रहता है कि और आगे क्या है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन छोड़ के उस जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने के लिए कुछ चीजें बेसिक लगती है, खाना, पीना, सोना, ये बेसिक चीजें, उसके उपरांत और क्या है, इसके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हैं, केवल भक्त नहीं, अभक्त भी। अभी साइंटिस्ट जो शास्त्र इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गणितज्ञ, शास्त्रज्ञ, ये सब लोग भी ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली मून चंद्रयान 3, इसका हमारा मून के ऊपर हमारा भारत का सैटेलाइट वहां पे लैंड हुआ, तो देखते हैं कि किस प्रकार साइंटिस्ट लोगों को इस पृथ्वी के बाहर जो ग्रह है उसमें क्या चल रहा है, इसके पीछे जिज्ञासा है। जीव का स्वरूप ही है कि वो जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि वो हमेशा जिज्ञासा करता है। केवल जो सामने पड़ा है खाना, या जो मैंने चर्चा की, उसके बारे में ही सोचता नहीं, उसके आगे क्या है, और क्या है, और क्या है। तो पृथ्वी के बाहर, चंद्र के ऊपर क्या है, इसकी खोज में हमारे शास्त्रज्ञ वहां पर सैटेलाइट भेजे। तो इस प्रकार हमको हमेशा नॉलेज की खोज में रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या है, आनंद, प्लेजर सीकिंग। हाँ, आत्मा का स्वरूप ही है आनंदमयो अभ्यासात, कि कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में भी जॉर्ज हैरिसन जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। हम जीवन में जो कुछ करते हैं आनंद के लिए करते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है किसके लिए, वो परीक्षा में अच्छे गुण लाए और उससे उसको आनंद प्राप्त हो। कोई वर्कर है, काम करने वाला व्यक्ति है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्यों, उसके अपने जो बॉस है या उसके वरिष्ठ है उसको प्रसन्न करे, उससे उसको आनंद मिलेगा, उसको समय पर सैलरी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, साथ ही साथ अप्रेजल, तनख्वाह बढ़ाई जाए समय से समय, इसके लिए क्यों, उसको उससे आनंद प्राप्त होता है। उसके पश्चात फैमिली लाइफ में हम सब कुछ कार्य करते हैं, माँ बच्चे का ख्याल रखती है, बच्चा माँ की, माँ से अच्छी बातें करता है, पति पत्नी के ध्यान रखता है, काम करता है, क्यों, उससे वैवाहिक जीवन में उसको आनंद मिले। इसलिए तो हर कार्य जो हम कर रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है आनंद, पर हर बार उससे आनंद मिलता है ऐसा नहीं, क्योंकि जो सही जो आनंद है वो भगवान के चरणों के पास ही है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पादयते पुंसा शोक मोह भयापहा। अभी इस श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार शोक, मोह और भय, ये तीन मुख्य कारण है हमारे दुख के। हम शोक में रहते हैं, सॉरी, हम पहले तो प्रयास करते हैं कुछ चीज पाने का, मोह, हाँ मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ये गाड़ी मिलनी चाहिए, ऐसा घर बांधना चाहिए, ऐसा जॉब मिलना चाहिए, ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए, मोह। उसके बाद भय, हमारे जीवन में हमेशा भय रहता है कि ये चीजें मैंने कमाई है, मैंने ये, मुझे ये सब चीजें प्राप्त हुई है, परंतु ये कोई ले ना ले, कहीं मेरा, मैंने जो धन कमाया है इतना मेहनत करके, कहीं इसका कोई चोरी ना हो जाए, तो इसका हमें हमेशा भय रहता है। और कुछ कारणवश हमारे जीवन में से यह सुख, यह संपत्ति, यह परिवार या कुछ भी चीज जब भी जाता है, उसके कारण हमारे जीवन में क्या होता है? लैमेंटेशन, शोक, दुख होता है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमेशा हमें दुख प्रदान करती है। तो इससे निकलने का मार्ग श्रीमद् भागवतम में बताया है, क्या है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, तो क्या होता होता है कि हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति भक्ति का भक्ति उत्पादयते। अपने शरीर, आपके अपने मन में, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति निर्माण होती है, और ये जो शोक मोह भय है, अपहा, ये हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो दुख निवारण का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भी ये, हमने भी शुरुआत में भी ये श्लोक गाया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके। तो हमारे जीवन में जो भी अभद्र है उसका नाश कैसे होगा? अगर हम नित्यम भागवत सेवया, नियमित रूप से हम अगर भगवान की कथा भागवत सेवया, भागवत सेवया में दो अर्थ बताए गए हैं। एक है कि भगवान के बारे में श्रवण करना, भागवत कथा सुनना, प्रवचन सुनना वगैरह, और दूसरा है पर्सन भागवत, जो व्यक्ति रूप में वैष्णव है, भागवत है, शुद्ध भक्त है भगवान का, उसकी सेवा करना, उनकी सेवा करना। तो ये दो चीजों से हमारे जीवन में सब अभद्र जो भी गलत चीजें हैं उनका नाश हो जाएगा, अपने हृदय में भी जो दोष है उनका भी नाश हो जाएगा। दो चीजों से, क्या? भगवान के बारे में श्रवण और भगवान के भक्तों की सेवा। भगवत गीता में भगवान ने एक पीस फॉर्मूला, एक शांति का मार्ग बताया है। अभी हम देखते हैं कि दुनिया में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, कहीं भी युद्ध ना हो, यूनाइटेड नेशन तैयार हुआ, ये वो बहुत प्रयास करते हैं। घर में भी कभी कभी कलह होते हैं, उससे भी शांति, या कभी कभी समाज में, कम्युनिटी में, एक जगह पे मानो 100, 200, 300 लोग रहे, उनमें भी कभी कभी कलह होते हैं। तो इसमें शांति का मार्ग भगवान ने भगवद्गीता में बताया है। भगवद्गीता 5.29 पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति जान लेता है कि सभी चीजों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, सबके ईश्वर भगवान है ये सब व्यक्ति, और क्या? सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके जो नियर एंड डियर फ्रेंड है, सबके जो मित्र है, सुहृद है, वो भगवान है। ये तीन चीजें अगर हम जान लेते हैं तो क्या होगा? हमारे जीवन में शांति प्रस्थापित होगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शांति के सिवाय आनंद आ ही नहीं सकता। आपके जीवन में शांति है तो ही आप आनंद उपभोग कर सकते हैं। आप अगर कलह में हमेशा अपना जीवन बिता रहे हैं तो आपके जीवन में शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो आपको सुख नहीं है। तो इसलिए सुख चाहिए तो उसके लिए शांति चाहिए, और शांति कैसे मिल पाएगी? इन तीन चीजों से। भगवान श्री कृष्ण को भोक्ता समझ के कार्य करना, और सर्वलोक महेश्वरम, सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है ये समझ लेना, और सुहृद, अपने भी सुहृद। हम अगर दूसरे रिलेशंस में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे भगवान से भी ज्यादा, या भगवान को उनके रिलेशन में ना पकड़ते हुए केवल आप, मी एंड माइन, मैं और मेरे, इस चीज में ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? दुखी प्राप्त होगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हम सभी रिलेशन संभालेंगे, सभी सेवाएं करेंगे, और भगवान को भोग लगाएंगे, यज्ञ तपसा, तो ये सब करेंगे कार्य, तो हमारे जीवन में क्या होगा? आनंद आएगा। और अंत में एक श्लोक बताता हूं, भगवद्गीता का ही श्लोक है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। क्योंकि क्या है कि दुखों के जो वर्णन आया है इस श्लोक में, उसमें अनेकों अनेकों चीजें बताई गई है, और आखिर में क्या बोला है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार दुख है उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे बाहर निकलने का भी मार्ग हमें चाहिए, और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो व्यक्ति यह चीज समझ लेता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म ये जो है ये दिव्य है, इसको जो तत्वतः जान लेता है, उसको क्या होगा, जब भी वो ये देह का त्याग करेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उसको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहां जाता है, मां मेति, वो गोलोक वृंदावन में वैकुंठ धाम में वो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के भक्तों का सेवा करेंगे, भगवान की लीला जन्म और कर्म, जन्म कमाने बर्थ, जन्म भगवान का जो जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन, जन्म और कर्म भगवान की जो लीलाएं है उनका हम श्रवण करेंगे, तत्वतः हम उनको जानेंगे, हमारे जीवन में आचरण में भगवान का जो भक्ति संदेश है उसको लाएंगे, तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे हम बाहर निकल जाएंगे और वापस हमें पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो आइए इस जन्माष्टमी में हम भगवान के बारे में और सुनते हैं। बड़े वरिष्ठ वैष्णव भक्त आएंगे चौपाटी से, मुंबई से, यहाँ पे भी गौरांगपुर वगैरह सीनियर भक्त है, तो वे सब हमको भगवान के जन्म और कर्म के बारे में बताएंगे। तो जन्माष्टमी के जो तीन दिन है, 6, 7 और 8, उसमें आप सबको आपके परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ हम आमंत्रित करते हैं कि इस समय में आप आइए और भगवान के बारे में सुनिए और अपना जीवन सफल बनाएं। तो रिकैप में हम शॉर्ट में वापस से बताते हैं, आज हमने भागवतम के 5वें संत के 14वें अध्याय के 27वां श्लोक पढ़ा, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी, इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को बताते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक संसार में अनेकों अनेकों चीजों से हमको दुख प्राप्त होता है, उसमें मोह, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, अवमान, भूख, प्यास, व्याधि, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, इनका भी हमने वर्णन सुना। उसके पश्चात हमने देखा कि व्हाई शुड वी, मतलब लॉन्ग फॉर हैप्पीनेस, माने इसमें लिखा है कि हमको हमें आनंद के पीछे क्यों, सभी लोग आनंद के पीछे क्यों भाग रहे, इसके बारे में हमने देखा, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है, सच्चिद आनंद रूप है, इसलिए हमको भी जो भी चीजें इटर्नल है, ज्ञान रूपी है या आनंद देने वाली है, उसके प्रति आकर्षण रहता है। परंतु हमने देखा कि सही आनंद कहाँ पे है, भगवान के चरणों में है, और उसकी प्राप्ति कैसी करें, इसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान के बारे में श्रवण करने से, भागवत कथा सुनने से और भगवान के भक्तों की सेवा करने से हमको सही आनंद जो है वो प्राप्त होगा। और अंत में हमने देखा कि जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हमको बचना है तो हमको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के जो लीलाएं हैं उनका हमें श्रवण करना चाहिए, तत्वतः उनको जान लेना चाहिए, इसी से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे, किसी को कुछ टिप्पणी या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।